ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक 66 का शेष भाग। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ। कुमार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और जितनी वह चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण विचित्र अखंड अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जैसे धीवर मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो वे कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सबके सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं, परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उभरे कील मकड़ी पास, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आए के साबुत बचा न कोए। परंतु यह दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, वे बचने का कोई उपाय नहीं करते, परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है, वही जन्म मरण रूप चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान, इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विद्या आदि की पराधीनता दासता ही है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है तो यह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई, खुद की नहीं। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में वह धन का गुलाम है। संसार का यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद दलित कर देते हैं। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है उसको अपने कुछ विशेषता दिखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का यह कायदा है कि जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। किसी किसी में यहाँ तक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं, उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए, अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गईं, केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का छोटा सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत श्री तुकाराम जी शरीर सहित वैकुंठ चले गए। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के सम्मुख होता है, तब उसके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी देखने में आता है कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं। जिस गरुड़ की पाखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है, परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है, तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी तो आ जाती हैं, पर उनका वाहन दिवांध उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है, इसलिए वह महान अधम है। तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भगवान के साथ आ ही जाती है, पर जहाँ केवल लक्ष्मी की चाहना है, वहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान भी आ जाएं, यह नियम नहीं है। शरणागति के विषय में एक कथा आती है। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थीं और कहीं पर ताम्र वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी। उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, यह लता कितनी सुंदर है। वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है यह लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली, देखो बेटा, तुमने ख्याल किया कि नहीं? देखो, इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं, वृक्ष के कारण ही हैं। इस लता की शोभा भी वृक्ष के ही कारण हैं। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्ष की ही हुई ना? राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, यह महिमा तो लता की ही हुई ना? हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी ही बात सूझती है। सीता जी ने पूछा, वह क्या है बेटा? हनुमान जी ने कहा, माँ, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है, अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया यानी चरणों के आश्रय में रहना ही अच्छा लगता है। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे, ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आह्लादिनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है, और कोई केवल उनकी आह्लादिनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी आह्लादिनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। एक बार एक प्रज्ञा चक्षु यानी नेत्रहीन संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी, उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी, दिखता तो था ही नहीं, अब तैरें तो कैसे, किधर तैरें? भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित शरीर को ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया। वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वे चल पड़े। तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिए करना कुछ नहीं रहता, भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं, उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी, तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गईं। अंधेरा भी हो रहा था, वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली ज़मीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि बकरी को खाने के लिए पास में आए तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना मैं किसके शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वे चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे यह तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण हैं, जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, यह चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना, जिसका यह चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूँ। सिंह ने देखा कि ओहो, यह तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर, और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मार डालूँगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थरथर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्ष की ऊपर की कोपलें खाया करती और मस्त रहती। खोज पकड़ सेठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोपल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है, उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जाको शरणों गहे तकहें ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले ब्रह्मो जात गजराज, भयो जात गजराज। भगवान के साथ काम भय द्वेष क्रोध स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। कामाद द्वेषात भयाद स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बह वस्तद गतिम यज्ञताः। गोप्यः कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपाः, संबंधनाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभोः। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से द्वेष से भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से, जैसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों यानी युधिष्ठिर आदि ने स्नेह से और हम लोगों यानी नारद आदि ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। सत्संगेन ही दैतेया यातु धाना मृगा खगा गंधर्वापसरसो नागा सिद्धाश्चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियो अंत्यजा रजस्तम प्रकृत्यस्त स्मितस्तस्मिन् युगे अनघ बहवो मत्पदम प्राप्तास्त्वाष्ट्र कायाधवादय वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चात विभीषण सुग्रीवो हनुमान रक्षो गजो ग्रधो वणिक्पथ व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञ पत्न्यस्तथा परे तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमाः अव्रतात तपस्तपसः सत्संगान मामुपागताः। भगवान कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक ही बात है। सत्संग आदि अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। भृत्रासुर प्रहलाद वृषपर्वा बलि बाणासुर मैदानव विभीषण सुग्रीव हनुमान जाम्बवान गजेंद्र जटायु तुलाधार वैश्य धर्मव्याध गुप्जा व्रज की गोपियाँ यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी, इसी प्रकार उन्होंने कृच्छंद्र चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी, बस केवल सत्संग मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। तात्पर्य यह हुआ कि काम भय द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। उन भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति विद्या आदि भेद हो सकते हैं वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं, कारण कि वे अच्युत भगवान के ही हैं। यतस्तदीयाः संसार के नहीं अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैं। पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्र मादयः न कारणं मत भजने भक्तिरेव हि कारणम्। मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद अथवा जाति नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। किम जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन किम विद्यया सकल शास्त्र विचारवत्या यस्यास्ति चेतसी सदा परमेश भक्तिः को अन्यस्ततस्त्री भुवने पुरुषो अस्ति धन्यः। संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण यानी ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ, संपूर्ण शास्त्रों के गहरे अध्ययन से क्या हुआ, अर्थात कुछ नहीं हुआ। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है। व्याधस्याचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काका जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी, यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई। कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है, वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, आचरण विद्या आदि गुणों से नहीं। पितृगोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका श्रीराम भक्ति मात्रेण मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रकः। शरणागति का रहस्य। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं, फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है। क्योंकि हरेक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसी बात को कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में दो बातें बताई हैं। पहला, मामेकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरा भजन करता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं, केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा हैं, लीलाएँ हैं, नाम हैं, धाम हैं। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं, उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा ले। उल्टा अर्थ लगाना क्या है, भगवान के गुण प्रभाव नाम धाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है, अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है, यह उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात, वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात, और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं तो बड़ी अच्छी बात, उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती, उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैः विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुद्धिर्वा श्यामः स एवाद्य गतिर्मय मायम्। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हों या सुंदर शिरोमणि हों, गुणहीन हों या गुणियों में श्रेष्ठ हों, मेरे पति द्वेष रखते हों या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हों, वे चाहे जैसे हों, मेरी तो वे एक ही एक मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मम्मर महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर मर्माहत कर ही करें, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहे वैसे करें, वे तो मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान की इन बातों की परवाह न होने से भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है, पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान के शरण होते हैं वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते प्रत्युत गुण प्रभाव आदि के ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं उसके पद का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है उसका खुद का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई व्यक्ति केवल व्यक्ति का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी यह बात नहीं है, वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए उनके गुणों आदि पर नहीं। सप्तर्षियों ने जब पार्वती जी के सामने शिव जी के अनेक अवगुणों का और विष्णु के अनेक सद्गुणों का वर्णन करते हुए उनको शिव जी का त्याग करने के लिए कहा तब पार्वती जी ने उनको यही उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुल धाम जेह कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। ऐसी ही बात गोपियों ने भी उद्धव जी से कही थी, ऊधव मनमाने की बात दाख छोहारा छाणे अमृत फल विष कीरा विष खात जो चकोर को दे कपूर कोई तज अंगार अघात मधुप करत घर कोरे काठ में बंधत कमल के पात ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है उनकी बिक्री भी कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं तो भगवान के मन में उनका उसका बड़ा आदर होता है। प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे भगवान के अपने हो जाएंगे। पूतना राक्षसी ने जहर लगाकर स्तन मुख में दिया तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वह मुक्ति पूतना को मिल गई। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघासया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृयुचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो इस पापिनी पूतना ने जिन्हें मार डालने की इच्छा से अपने स्तनों पर लगाया हुआ कालकूट विष मिलाकर भी वह गति प्राप्त की जो धात्री को मिलनी चाहिए उनके अलावा और कौन दयालु है जिसकी शरण में जाएं। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराई। जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी, अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दें। तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, उन्हें अपने आप को ही दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं, कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। सर्वभाव से भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में हैं, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है, इस प्रकार हम भी कुछ हैं ऐसा मानकर भगवान के शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगें, कंठ गदगद हो जाए, पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं तो हम भगवान के शरण कैसे हुए आदि आदि। ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं हैं। जो अनन्य शरण हो जाता है वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है, अपने में मूर्खता है कि विद्वता है, योग्यता है कि अयोग्यता है आदि। इन सब की तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीज़ें कूड़ा करकट हैं जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि वह इन चीज़ों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया पर भक्तों के गुण तो मेरे में आए ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद उन गुणों की तरफ भूलकर भी न देखें, इसका यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें, यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या न आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण हैं या नहीं। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं, तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया आदि आदि। ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू बात है। बड़े नीचे दर्जे की बात है, ऐसे लोगों को क्या समझाएं, वे सत्संग के नज़दीक ही नहीं आए, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है, वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपमान होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग, निरोग, अवस्था आदि से कोई मतलब ही नहीं होता, इनकी तरफ वह देखता ही नहीं, वह यही देखता है कि मैं हूँ और भगवान है, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं, जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके भक्त हैं क्या? वो तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं, यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी, उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया, यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया, भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ। इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है, कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक कुलटा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना, अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी, मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थीं, दीवार के पास ही वहाँ का मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह कुलटा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है, इसने मेरे पर जूती सहित पैर रखकर मेरे को नापाक बना दिया। वह वहीं बैठकर उसकी राह देखता रहा कि कब आएगी। जब वह कुलटा पीछे लौटकर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअक्ल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़े कुरान बोरा भया, राच्यो नहीं रहे मान। अर्थात, एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वह यही थी। तू केवल कुरान पढ़ पढ़कर बावला हो गया है, अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता, कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता। तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ। कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे, सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मार कर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे, गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहां से हटा दिया गया। जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा कि तुमको क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उनकी लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं, तो लक्ष्य कहाँ सदा है? अभी तो दृष्टि फैली हुई है, लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मई चानन्य योगे न भक्तिर्व्यभिचारिणी, अन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए, वहाँ तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो बारह कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे सोलह कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओहो आपने बड़ी भारी कृपा कर दी, मैं तो राम जी को दशरथ के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे बारह कला के अवतार हैं, इतने बड़े हैं वे, आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण सोलह कला के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं, राजाधिराज रामचंद्र नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने रामलला को, नंदलला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। या ब्रज रज की परस से मुकति मिलत है चार, वा रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है, अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और न योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से, और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा यानी व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है, कपड़ा ही नहीं माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ? इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक व्रजवासी ग्वाला मिल गया, वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य शक्ति गणेश ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका तो पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि जाती ही नहीं। व्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहाँ एक गोपी जल भरने आई, उसने कान लगाया कि बाबा जी वहाँ क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्म क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं सखी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं, कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा। अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा, हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है, हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा। नगन मूरति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की, अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा। यशोदा मैया दाऊ जी से कहती हैं, देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर, कहीं यह जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया यह कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई सांप काट ले तो। मैया कहती है, बेटा अभी वह छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा, हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली, वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं, कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा, इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, चाहिन चाहिय कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन सोरा उर निज गेहु। कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज सनेहु, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो राउर निज गेहु, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है, भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट न हो, अर्थात कुछ भी चाहना न हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ तो आसक्ति वासना मोह ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं, मा यात पांता पथि भीमरथ्याम दिगंबर कोऽपि तमाल नील विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूत समाकर्षति चित्तवित्तम। अरे पथिको, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है, वहाँ अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है, वास्तव में तो वह अपने पास से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा, उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए, इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना, कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान न हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म, फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी की भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी नहीं करना पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, यह हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो यही कहेंगे भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया उसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान छटपटाहट होने लगती है। तद्विस्मरणे परम व्याकुलने तेति, ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर् विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णव वाग्रयः। तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेश के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। न पारमष्ठेयम न महेंद्र धिष्णयम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मय्यर पितात्मेच्छति मद विनान्यत। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। परिशिष्ट भाव, भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता तत्व बोध है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता यानी प्रेम है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती, अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है, इसलिए शरणागति सर्वगुह्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म या कर्तव्य कर्म का आश्रय न हो। जैसे पहले अध्याय में आया है, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, वहाँ भी प्राणास्त्यक्त्वा का अर्थ प्राणों का त्याग न लेकर प्राणों के आश्रय यानी आशा का त्याग ही लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा, असंभव बात है। इसी तरह पहले अध्याय में आया है, अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं, इसका अर्थ है कि वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। अतः यहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज पद का अर्थ धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों कर्तव्य कर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म में जड़ता का और शरणागति में चिन्मयता का संबंध रहता है। कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य है बाहर से व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो, किसी का आश्रय न हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। यह बिनती रघुबूर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सथैव भजाम्यहम्। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ अंत वाला ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ यानी अनंत मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। जय श्री राम।